लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है थाईलैंड और जापान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा की पृष्ठभूमि, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर अनुग्रह मिंज। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस 19 नवंबर से 26 नवंबर तक थाईलैंड और जापान की प्रेरित यात्रा कर रहे हैं। अपनी 7 दिवसीय प्रेरित यात्रा के लिए वे मंगलवार संध्या रोम से रवाना हुए थे। इटली से क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार के आकाशों से होते हुए उनका विमान बुधवार को थाईलैंड के बैंकॉक पहुंचा। इन सभी राष्ट्रों के प्रति मंगल कामनाएं अर्पित कर संत पापा फ्रांसिस ने राष्ट्राध्यक्षों के नाम तार संदेश प्रेषित कर उनके देशों में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रभु ईश्वर से याचना की। विमान यात्रा के दौरान संत पापा ने वहां उपस्थित पत्रकारों का अभिवादन किया तथा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा,
Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e grazie del vostro lavoro che fa tanto bene alla gente se informata e anche conoscere queste culture sono lontane da occidente. Grazie del vostro sforzo.
इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आपकी अनुपम सेवा के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो लोगों को सूचना प्रदान कर उनकी भलाई करती और साथ ही उन्हें पश्चिम जगत से दूर विद्यमान संस्कृतियों का ज्ञान कराती है। बैंकॉक का परिवार सम्मेलन और जापान से संपूर्ण विश्व के लिए परमाणु विरोधी और निरस्त्रीकरण का संदेश पहुंचाना एशियाई देशों की इस 7 दिवसीय यात्रा के प्रकाश स्तंभ हैं। वेटिकन से अपनी यात्रा आरंभ करने के पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर कहा था, थाईलैंड और जापान के प्रिय मित्रों, मुलाकात से पूर्व हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे ये दिन अनुग्रह और आनंद से भरपूर रहें। थाईलैंड का पूर्व नाम सियाम हुआ करता था और सियाम में ही परम धर्म पीठीय मिशन की स्थापना की 350वीं वर्षगांठ के स्मरणार्थ थाईलैंड की यात्रा आयोजित की गई है। बौद्ध बहुल राष्ट्र थाईलैंड में कैथोलिक धर्मानुयायी कुल आबादी का केवल 1% है। शनिवार को जापान के लिए रवाना होने से पूर्व संत पापा फ्रांसिस थाईलैंड के सम्राट महाराजा धीराज वजीरा लॉन्ग कॉर्न, बौद्ध धर्मानुयायियों के प्रधान गुरु सोमदेत मुनेवांग आर्यावांग सागतयाना, थाई कैथोलिक धर्माध्यक्षों तथा देश के युवाओं से मुलाकातें करेंगे। बैंकॉक में विगत 50 वर्षों से सेवारत 77 वर्षीय अर्जेंटीना की सिस्टर आना रोजा सिवोरी संत पापा के साथ शहर का दौरा करेंगी तथा उनकी आधिकारिक अनुवादक भी होंगी। सिस्टर आना रोजा संत पापा की बचपन की दोस्त होने के साथ साथ उनकी चचेरी बहन भी हैं। वे विगत 50 वर्षों से थाई स्कूलों में अपनी सेवा अर्पित करती रही हैं। सन 1984 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संपन्न थाईलैंड की यात्रा के उपरांत कलीसिया के परम धर्म गुरु द्वारा थाईलैंड की इस देश में यह यात्रा पहली यात्रा है, जिसके दौरान संत पापा फ्रांसिस निसंदेह कुछ अहम सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे। दूसरी ओर उनकी थाईलैंड यात्रा अवश्य ही यहां के लघु कैथोलिक समुदाय के मनोबल को मजबूत करेगी। अपनी यात्रा से पूर्व थाईलैंड के कैथलिकों को प्रेषित वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा था कि उनकी यात्रा थाईलैंड के कैथलिकों को उनके विश्वास में सुदृढ़ करेगी ताकि वे संपूर्ण थाई समाज और मातृभूमि की भलाई के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा था कि वे इस यात्रा के द्वारा विशेष रूप से शांति और निर्धनों की सेवा में अंतरधार्मिक संवाद और सहयोग के महत्व को प्रकाशित करना चाहते थे। बुधवार 20 नवंबर को लगभग 11.5 घंटों की उड़ान पूरी कर संत पापा का विमान मध्याह्न 12:30 बजे बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। स्मरण रहे कि बैंकॉक रोम से 6 घंटे आगे है। हवाई अड्डे पर थाईलैंड के सम्राट की ओर से एक उच्चाधिकारी ने संत पापा फ्रांसिस को पुष्पमाला अर्पित की। उनके संग थाईलैंड के 6 उच्चाधिकारियों, थाई पारंपरिक वस्त्र धारण किए 11 बच्चों और कैथलिक कलीसिया के धर्माधीक्षीय सम्मेलन के धर्माधिकारियों ने सैन्य सलामी सहित राष्ट्र में पधारे खास मेहमान का भावपूर्ण स्वागत किया। संत पापा की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों उत्साही कैथलिक बैंकॉक स्थित परम धर्म पीठी राज दूतावास और सेंट लुइस अस्पताल के इर्द गिर्द अपने सेल्फी लिए पहुंच गए थे। 60 वर्षीय ओरावान थोंग जामरून ने कहा, जीवन में एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूं और उनसे आशीष लेना चाहता हूं। अतीत में सियाम के नाम से विख्यात थाईलैंड को आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ थाईलैंड कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के केंद्र में बसा थाईलैंड 76 प्रांतों से बना हुआ है। लगभग 6.8 करोड़ की कुल आबादी में 95% लोग बौद्ध, 4% इस्लाम और 1% लोग ख्रिस्तीय धर्म को मानने वाले हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है जो देश का सर्वाधिक विशाल शहर भी है। राष्ट्र के उत्तर में म्यांमार, पूर्व में लाओस और कंबोडिया, दक्षिण में मलेशिया की खाड़ी और पश्चिम में अंडमान सागर से जुड़ा भारत एवं इंडोनेशिया इसके सीमावर्ती देश हैं। थाईलैंड में कैथलिक धर्म के इतिहास पर यदि एक दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम 1567 ईस्वी में यहाँ पुर्तगाल के डोमिनिकन धर्म समाजी मिशनरियों का आगमन हुआ था। तदुपरांत सन 1669 ईस्वी में फ्रांस के कैथलिक मिशनरियों ने थाईलैंड में सुसमाचार का प्रचार किया तथा सदियों तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कैथलिक धर्म की उपस्थिति को बरकरार रखा। हालांकि थाईलैंड में व्याप्त आंतरिक संघर्षों और उपनिवेशवाद के चलते, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब एक राष्ट्रवादी सरकार ने सभी थाई नागरिकों का धर्मांतरण बौद्ध धर्म में करने की कोशिश की थी, तब कैथलिक धर्म के अस्तित्व को गहरी चोट लगी। संत पापा फ्रांसिस 20 से 23 नवंबर तक थाईलैंड में रहेंगे, जहां वे 2 अवसरों पर सार्वजनिक रूप से ख्रीस्त यागों का नेतृत्व करेंगे। इन अवसरों पर 50,000 श्रद्धालुओं के एकत्र होने का अनुमान लगाया गया है। एशिया न्यूज के संपादक फादर बेर्नार्डो चेरवलेरा के अनुसार, संत पापा फ्रांसिस अपनी थाई यात्रा के विभिन्न समारोहों के दौरान मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों के शोषण, चरणार्थी समस्या तथा भौतिकतावाद से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अवश्य ही लोगों में चेतना जागरण का प्रयास करेंगे। और अब लीजिए प्रस्तुत है आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
जगत गुरु प्रभु जी नमो नमः।
जगत गुरु प्रभु जी नमो नमः।
सद्गुरु प्रभु जी नमो नमः।
सद्गुरु प्रभु जी नमो नमः।
मम गुरु प्रभु जी नमो नमः।
मम गुरु प्रभु जी नमो नमः।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वियतनाम के उत्तरी धर्म प्रांतों में युवा दिवस मना रहे युवाओं के लिए एक वीडियो संदेश भेजा। वे आज बुधवार 20 नवंबर को राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। इसका विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अपने घर अपने परिवार के पास जाओ। संत पापा ने युवाओं को वियतनामी शहीदों की विरासत की पेशकश की और उन्हें एक ईमानदार, जिम्मेदार और आशावादी गवाह बनने के लिए कहा। संत पापा ने कहा कि वियतनामी संस्कृति में कोई भी शब्द घर शब्द से अद्भुत नहीं है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो किसी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है, न केवल परिवार और पितृत्व बल्कि जन्मभूमि और मातृभूमि। संत पापा ने कहा, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आप अपने घर को अपने साथ ले जाएं। अपने घर जाओ का मतलब है ऐसी यात्रा पर जाना जो आपको आपके मूल में वापस लाए और आपकी पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को गहरा करें। आगे संत पापा ने कहा, बपतिस्मा के माध्यम से आप दूसरे बड़े घर कलीसिया के उत्तराधिकारी हैं। कलीसिया एक घर है, यह आपका घर है जहां आप ईश्वर की पुकार पर आधारित शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने वियतनामी शहीदों को याद करते हुए कहा, उदार और उत्साही शहीदों द्वारा वियतनामी कलीसिया का जन्म हुआ है। वे शहीद पूर्वज आपका मार्गदर्शन करें और उनके प्रति आपका आभार हमेशा एक मिशनरी उत्साह का स्रोत बने। संत पापा ने युवाओं से कहा, यह अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी कलीसिया को युवा और आनंदमय, जीवन और भाईचारे से भरा बनाएं। इसके लिए तीन बातों की आवश्यकता है, ईमानदारी, जिम्मेदारी और आशावाद। संत पापा ने यह स्पष्ट किया कि इस समाज में खुद की पहचान के लिए वफादार होना मुश्किल है और आत्मचिंतन की क्षमता के बिना विश्वास करना कठिन है। उन्होंने स्वीकार किया कि ईमानदारी अक्सर नुकसान का कारण बन सकती है, जिम्मेदारी की भावना असुविधा का कारण बन सकती है और यह आशावाद समाज की भ्रष्ट वास्तविकताओं के सामने अजीब सा लग सकता है। हालांकि उन्होंने कहा, ये मूल्य आपके समाज के हैं और आपकी कलीसिया भी आपसे यही अपेक्षा करती है। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने वियतनाम के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने सुंदर कैथोलिक पहचान को प्रदर्शित करने और आगे ले चलने से न डरें और प्रभु सेवक कार्डिनल वान थुमान उन्हें अपने लोगों और देश को प्यार करने में सहयोग दे। साथ ही संत पापा ने इंग्लैंड में मारे गए 39 वियतनामी प्रवासियों के लिए भी प्रार्थना की। और संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 20 नवंबर को फादर अंतोनी सामी साबरीमुथु को पलायम कोट्टई धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। फादर अंतोनी सामी उसी धर्म प्रांत के धर्म प्रांतीय पुरोहित हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष अंतोनी स्वामी साबरीमुथु का जन्म 8 दिसंबर 1960 को पलायम कोट्टई धर्म प्रांत के वडक्कम वंदमन में हुआ था। उन्होंने मदुरई के माइनर सेमिनरी में प्रवेश किया, फिर बैंगलोर में दार्शनिक और ईश शास्त्र में स्नातक की डिग्री तथा अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उन्होंने पेरिस के एक कैथोलिक इंस्टीट्यूट में कैनन लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 26 अप्रैल 1987 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। पुरोहिताभिषेक के बाद उन्होंने अनेक पदों में अपनी सेवा दी। 1987 से 1989 तक वे धर्माध्यक्ष के सचिव रहे। 1989 से 92 तक मदुरई के लघु सेमिनरी के व्याख्याता। 1992 से 2001 तक पेरिस में कैनन लॉ में डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया। 2001 से 2010 तक बैंगलोर के सेमिनरी में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। फिर 2001 से 2004 तक मदुरई के क्राइस्ट हॉल सेमिनरी के रेक्टर। 2004 से 2011 तक पलायम कोट्टई धर्म प्रांत के विकर जनरल और 2004 से 2005 तक बालक येसु तीर्थालय शांति नगर के पल्ली पुरोहित। 2005 से 2009 तक महाराजा नगर में संत जूदा अभ्यारण के रेक्टर। 2009 से 2011 तक संत मरिया सेमिनरी के रेक्टर और बुलाहट केंद्र के निदेशक। 2011 से अब तक वे बैंगलोर में संत पीटर सेमिनरी में रहते हैं और वहीं के प्रोफेसर हैं। उधर प्रवासियों के लिए कलीसिया की चिंता है, विशेष रूप से जो लेस्बोस में शरणार्थी हैं। लेस्बोस के दो शरणार्थी परिवार मंगलवार को लक्समबर्ग के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। कार्डिनल जॉन क्लाउड होलरिच के नेतृत्व में महाधर्म प्रांत द्वारा इन दो परिवारों की देखभाल की जाएगी। पिछले मई संत पापा फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए कार्डिनल होलरिच और कार्डिनल कॉनराड क्रेजेस्वी के नेतृत्व में एक वाटिकन प्रतिनिधि मंडल लेस्बोस का दौरा किया, जो संत इजिदियो समुदाय और अभिन्न मानव विकास हेतु गठित परम धर्म पीठ से संलग्न प्रवासी और शरणार्थियों के विभाग से थे। वे अपने साथ संत पापा की एकजुटता को द्वीप के प्रवासियों के पास ले आए। समुद्र का वह क्षेत्र ग्रीस को तुर्की से अलग करता है। 6 महीने पहले अफगान, ईरान, इराकी, सीरियाई, कुवैत और उत्तर अफ्रीका के करीब 7,000 शरणार्थी वहां मौजूद थे। उधर संयुक्त राष्ट्र ने आशंका व्यक्त की है कि पश्चिम अफ्रीका के शुष्क साहिल क्षेत्र में एक मानवीय संकट बढ़ रहा है। बढ़ती चरमपंथी हमलों से जुड़ी असुरक्षा के कारण बुर्किना फासो, माली और नाइजर में 8,60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेसले का कहना है कि अगर दुनिया जान बचाने के लिए गंभीर है तो अभी कार्यवाही का समय है। अकेले बुर्किना फासो में इस साल लगभग 500,000 लोग विस्थापित हुए हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट समूह और अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों का यह नया शिकारगाह बन गया है। 2018 की तुलना में बुर्किना फासो इस वर्ष अधिक हमले देखे और देश का एक तिहाई अब एक संघर्ष क्षेत्र बन गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।